उसी के साथ भगवान ऋषभ देव को विधि नायक बनाकर मुनि सूरतनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र भगवान जो मोक्ष गए उनका बड़ा रोमांचक कथानक है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जन्म से गूंगे थे, समझी अंतिमा जी सुनो, 923 पुत्र जन्म से गूंगे थे क्योंकि ये नित्य निगोद से आए थे। और नित्य निगोद का मतलब है सातवें नरक के नीचे जो स्थान है नित्य निगोद का, वहां पर थे और वहां केवल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने की उनकी स्थिति थी। जैसे खौलता हुआ जल एकदम बुड़बुड़ करता रहता है, इसी प्रकार से ये उस निगोद स्थान में केवल कुलबुलाते रहते थे, वहां से निकलने की कोई स्थिति नहीं थी क्योंकि वहां कोई संबोधन नहीं है, वहां कोई मन नहीं है, वहां एक स्पर्शन इंद्री के अलावा कोई इंद्री नहीं है। एक बार न जाने कहां से अपने आप पुण्य का उदय आया और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। इन्हें बोलना नहीं आता था, गूंगे थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई सुख वैभव की चाह नहीं, कुछ अपने पिता से कहते नहीं थे। भरत चक्रवर्ती ने एक बार भगवान ऋषभ देव के समोसरण में ले गए और समोसरण का चमत्कार देखो, वहां जाते एकदम बोलने लगे। एकदम ऋषभ देव भगवान की जयकार बोलते ही उनका स्वर फूट पड़ा और ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि से जानकारी लेते हैं कि अरे भव्यात्मन, तुम नित्य निगोद से आए हो, पहली बार जीवन में मनुष्य पर्याय पाई है और ये कितना क्षणिक और नश्वर जीवन है। उसी समय उन सब के सब भाइयों ने सोच लिया कि अब हमें महल में नहीं जाना है और अपने पिता से कह दिया कि अब हम यहीं पर दीक्षा लेंगे। उन सब के सब ने दीक्षा ले ली घोर तपश्चरण करके और उसी भाव से मोक्ष चले गए। ऐसे इतिहास को साकार करने की प्रेरणा पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या में दिया है, क्योंकि अयोध्या का ये इतिहास है। ये दोनों इतिहास अयोध्या के हैं, एक भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र जिन्होंने उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया और एक भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जिन्होंने उसी जन्म से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे एक मंदिर साकार हो गया और अब दूसरा मंदिर पूर्णता की ओर है और उसमें विराजमान 923 सिद्ध प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। उसी के बाजू से भगवान मुनि सूरतनाथ का मंदिर जो 9 लाख साल के इतिहास को स्मरण कराने जा रहा है। अयोध्या में ऐसे मुनि सूरतनाथ भगवान का मंदिर था, वहां आचार्य संघ विराजमान था, संघ नायक आचार्य द्विती महाराज आने वाले गृहस्थों को उपदेश दिया करते थे। ये सब इतिहास यहाँ पर साकार हो रहे हैं। उन्हीं में से आप भगवान मुनि सूरतनाथ का जीवन चरित्र सुन रहे हैं। महाव्रतम मुक्ति पथम दधाना प्राप्ता प्रमुक्तिम मुनि सुव्रतस्तम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि भूयात् सदा मे नमोस्तुतुभ्यम। जिन्होंने महाव्रतों को धारण कर मुक्ति के मार्ग को दिखाया और स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे मुनि सूरतनाथ भगवान हमें रत्नत्रय की प्राप्ति करावें, हमारे परिणामों की शुद्धि हो, इस भावना के साथ भगवान मुनि सूरतनाथ के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आगे के कथानक की ओर चलती हूँ। मुनि सूरतनाथ के भाव से तृतीय भाव पूर्व राजा हरिवर्मा ने दीक्षा लेकर और 14वें स्वर्ग में इंद्र का पद प्राप्त किया था, प्राणत इंद्र हुए और वहां 20 सागर की आयु को खूब सम्यक्त की वृद्धि के साथ साथ व्यतीत किया और 6 महीने जब उनकी आयु के शेष बचे तो उनकी वहां विशेष पूजा आराधना होने लग गई। सब लोग अवधिक ज्ञान से जान गए कि हे इंद्र महाराज, अब आपको मध्यलोक में जाना है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले महान तीर्थंकर के रूप में जन्म लेना है। अब इधर क्या होता है, राजगृही नगरी, मगध देश के अंदर राजगृही नगरी है, आज भी वो नगरी है जहां भगवान मुनि सुवर्तनाथ का सुंदर जिनालय गणी ज्ञानमती माता के वहां जाने के पश्चात बना। तो वहां पर हमारे संघपति अनिल कुमार जी की ओर से भगवान मुनि सुवर्तनाथ की सवा 12 फुट की प्रतिमा विराजमान हुई और सुंदर कमल मंदिर बनाकर आज भी शनिग्रह के अरिष्ट निवारण के लिए उनकी आराधना भक्तगण करते हैं। आपको उन्हीं मुनि सुवर्तनाथ भगवान की जन्म नगरी राजगृही की ओर ले चलती हूँ। वहां हरिवंश के शिरोमणि महाराजा सुमित महाराज राज करते थे और उनका विवाह राजकुमारी सोमा के साथ में हुआ। सोमावती परिणय के पश्चात महान राज सुख का उपभोग कर रही थी। सुमित्र महाराज जैसे राजा को पति के रूप में पाकर निहाल हुई थी और जो भगवान के माता पिता होते हैं उनके लिए तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों में कहा है कि उनके स्वयं के भी जन्म से मल मूत्र नहीं होता। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता रजस्वला नहीं होती फिर भी गर्भ को धारण करती, ये जिन माता की विशेषता होती है। यानी सब को पता होता है, सौदर्व इंद्र को विशेष पता होता है कि अब हमें राजगृही नगरी में जाकर के विशेष महल बनाना है और वहां पर इन राजा रानी को निवास कराना है जिनके गर्भ से तीर्थंकर पुत्र का जन्म होने वाला है। तो होता क्या है, श्रावण कृष्णा द्वितीया के दिन श्रवण नक्षत्र में जब ये प्राणतेंद्र वहां से स्वर्ग से उतर करके आ करके माता के गर्भ में अवतार लेने के सन्मुख हुआ, बस उस समय माता सोमा 16 सपने देखती हैं, बड़े सुंदर सुंदर सपने, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10 नहीं 16 सपने, जैसे आप हर पंच कल्याणक में देखते हैं। गर्भ कल्याणक के दिन माता के 16 सपने दिखाए जाते हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है पंच कल्याणक का। और उस नगरी के अंदर माता जब 16 स्वप्न देखती हैं, एकदम सौधर्म इंद्र उनके पास अष्ट दिक् कुमारियों को लेकर के आते हैं और वे देवियां माता की सेवा करने में लग जाती हैं। माता की सेवा करने में लगती हैं कि किसी प्रकार से माता को कोई कष्ट ना होने पाए। 16 सपनों को देखने के बाद माता देखती है कि मेरे मुख के अंदर एक बैल प्रवेश कर रहा है। और सपना तो सपना, बैल प्रवेश कर रहा है देखकर कोई माता घबराई नहीं, एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है। और प्रातः काल माता सोमावती उठती हैं, देवियां उन्हें विशेष प्रसन्न मुद्रा में देखकर पूछती हैं, माँ आज आप कुछ विशेष प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, मुझे आज 16 सपने दिखाई दिए हैं, बड़े अच्छे अच्छे सपने। आप देवियां उत्सुकता से कहती, माँ हमें बताओ ना, हम तो सौधर्म इंद्र के द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं, हमें आप अपने सपने बताइए, हम भी तो जाने। लेकिन सोमावती कहती हैं, नहीं, पहले इन सपनों को मैं अपने पतिदेव महाराज से बताऊंगी। अच्छा, देवियां कहती हैं, अच्छा आप हमें नहीं बताएंगी, अपने पतिदेव को बताओगी। हाँ देविया, तभी आप लोग भी सुन लेना, ऐसा माता कहती हैं। और राज दरबार में माँ को लेकर वे आठों अधिक कुमारियां पहुंचती हैं। यह ऐसे रोचक दृश्य देख देख करके न जाने कितने लोगों को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, भावना हो जाती है। कई महिलाएं मन में भावना करती, मैं ऐसे तीर्थंकर पुत्र को जन्म दूं, ऐसे मेरे पुण्य भाग्य जागृत हूं। वास्तव में तो ऐसी भावना भानी चाहिए कि भगवान यदि मुझे कुछ चाहिए, अपनी इच्छा अपनी व्यक्त करते हुए कि मैं ऐसी माँ से जन्म लूं कि जिन्हें 16 सपने दिखाई दें, मैं ऐसी माँ से जन्म लूं जिन्हें 16 सपने दिखाई दें, यानी 16 सपने देखने वाली माँ से अगर अपना जन्म हो गया तो समझो दोबारा से फिर तो जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे माँ से जन्म लेने वाला तो अजन्मा बनता है। तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने पति से जब स्वप्नों के बारे में कहती हैं कि हमने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं, महाराज सुमित्र कहते हैं उन सपनों को बताओ तो सही, क्योंकि एक काल निकल जाता है जब मल्लीनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद इस धरती पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने जन्म लिया, तो उस समय के लिए सबके लिए नई चीज थी। आज कई पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में लोग अगर 24 भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो 24 माता पिता बना देते हैं, बिल्कुल ये आगम से गलत है। कई बार पूज्य माता ने बताया ये प्राचीन परंपरा में कहीं भी ऐसा नहीं था, एक तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद ही दूसरे तीर्थंकर का जन्म होता है, इसलिए एक समय में हम 2 माता पिता तो बना ही नहीं सकते, 24 माता पिता की तो बात ही नहीं है। क्या 24 माता पिता 24 तीर्थंकर एक साथ जन्म ले सकते हैं? प्रतिमाएं चाहे कितनी हो 24 हो सकती हैं और कई 24 ही हो सकती हैं, लेकिन माता पिता एक बनाते हैं, एक विधि नायक भगवान होते हैं। जैसे अयोध्या के अंदर भी 24 ही भगवान भी हैं, 20 तीर्थंकर भगवान भी हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान भी हैं, लेकिन विधि नायक के रूप में ऋषभदेव भगवान रहेंगे और उनके माता पिता महाराजा नाभिराय और महारानी मरु देवी। और सौधर बिंदा आकर के प्रत्येक माता पिता का सम्मान करके भगवान के कल्याणकों को मनाते हैं। तो इस प्रकार से राजग्रही नगरी का मैंने आपको इतिहास बताना शुरू किया है, जहां माता सोमावती ने सपने देखे और महाराज सुमित्र से उनके फल पूछे और ये जब जाना कि मेरे सपने के बाद जो मेरे मुख में पहल प्रवेश कर रहा है उसका फल सुमित्र महाराज ने बताया, आपके पवित्र गर्भ में तीर्थंकर पुत्र का अवतार हो चुका है देवी। ऐसी रोमांचित हुई जैसे आज ही हमने पुत्र को पा लिया है। तो महानुभाव ऐसे रोमांचक कथानक को श्रवण करते रहिए कि किस प्रकार से भगवान मुनि सुव्रतनाथ का जन्म होता है, स्वर्गों में भी बाजे बजने लगते हैं, कौन से वर्ण के थे, कितनी आयु थी, किस प्रकार से उनका जीवन था, ये सारी कहानी आप सुनते रहिए। सच्ची कहानी।